प्राण स्पंदन को रोकने की कला। छह महीना कोई प्राणायाम का अभ्यास करे तो उसे केवल कुंभक प्राप्त हो जाता है। जय जय। देखे तो काम के पॉइंट पे होते हुए भी आप काम विकार से जो हानि होती है उससे बच जाएंगे, क्रोध के पॉइंट पे होते हुए भी क्रोध से जो अशांति होती है और दुख होता है उससे आप बच जाएंगे, अगर प्राण की गति को आप जानते थे। आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है ना तो आपके हाथ नीचे को जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन हो चाहे ईसाई हो चाहे मूसाई हो कोई भी हो, जब क्रोध आता ना तो ऐसा नहीं कहता, यूं कहता है। और जब काम सताता है ना तो स्त्री की आंख की पुतली भी देखोगे तो नीचे हो जाएगी, और जब राम का रस आता है तो आंख की ऊपर चली जाती है। तो जब आपके जीवन में पवित्रता आती है तो आपके प्राण ऊपर को चलते हैं और उसकी स्पंदन कम होती है, और जीवन में अपवित्रता आती है तो स्पंदन जोरदार होते हैं और प्राण नीचे को चलते हैं। जय जय। आप चीन की बात को जानते हैं, दिल्ली की बात को जानते हैं, कलकत्ता की बात को जानते हैं, अमेरिका की बात को जानते हैं, लंदन की बात को जानते हैं, आबू की बात को जानते हैं, अहमदाबाद की बात को जानते हैं, लेकिन आश्चर्य कि आप अपनी बात को क्यों नहीं जानते। जय हो। आप अपनी कलकत्ता की खबरें तो जानते हो लेकिन आप अपनी भी खबर कभी कभी जाना करो। ओम ओम। क्रोध आता है, आधा घंटा अगर क्रोध के विचार में आदमी रहे तो सवा उंस ब्लड उसका पॉइजन हो जाता है, तो उससे बहुत लाभ मिलते हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, अनिद्रा, हाई बीपी, ये सब होते हैं। तो कैसे आता है क्रोध? जब आए ना तो गिनो, एक दो तीन चार, सौ तक गिनो, फिर क्रोध करूंगा, क्रोध थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा। जो आदमी जल्दी जल्दी भोजन करता है ना, तू जा दूसरा आया तू जा, वो जरूर क्रोधी होगा। घड़ी सामने रख दे, चबा चबा के भोजन करना चाहिए 25 मिनट तक, 20 दिन में क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। वर्षों तक क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन घड़ी रख के आप चबा चबा के भोजन करो 25 मिनट 30 मिनट आधा घंटा, 20 दिन के लिए क्रोध आपका 85% 90% 95% आपका क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। 5% फुफाड़ा मारने के लिए होगा तो हरकत नहीं। तो महाराज काम विकार जब होता है तो उस वक्त प्राणों को अगर देखते रहे तो काम में जो जीवन शक्ति का ह्रास होता है बच सकता है। क्रोध के समय प्राणों को देखे तो प्रतिदिन 10-1 प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं उनमें 3000 छिद्र हैं, 3000 छिद्र हैं, वो 500 छिद्र काम करते बाकी के यूं ही पड़े हैं अनामत सीट जैसा, उपयोग हो चाहे ना हो अनामत पड़े रहते। तो 500 छिद्र काम करते तो जीवन इतना विकसित है, अगर 3000 छिद्र काम करने लग जाए तो जीवन की और भी शक्तियां विकसित हो सकती है। तो प्राणायाम करने से फेफड़ों की शक्ति, वो छुपे बंद छिद्र हैं, खुलते हैं और जीवन शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम लोगों की अपेक्षा योगी लोग बहुत बहुत काम करते फिर भी थकान कम होती है, बहुत बहुत उनको कड़वे मीठे अनुभव होते हैं फिर भी उनको सुख दुख की चोट कम लगती है। जय हो। जय जय। तो जीवन की शक्ति का विकास है। तो प्राणायाम प्रतिदिन थोड़े थोड़े प्राणायाम करके 6 महीने तक प्राणायाम का ठीक से अभ्यास करे तो उसको केवली कुंभक की प्राप्ति होती है। जिसका केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है उससे आगे अर्चन पूजन आदर सत्कार करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होने लगती है। जिसका केवली कुंभक सिद्ध हो गया है उस योगी का सत्कार करने से हम लोगों को पुण्य हो जाता है, तो वो कितना पुण्य आत्मा होगा। तो आज का श्लोक आपको महापुण्य आत्मा बनाने के लिए संकेत करता है कि पहला तो जीवन में सत्संग को स्थान दो, दूसरा वासना त्याग। हम सत्संग वासना का त्याग, आत्मज्ञान का विचार, मैं कौन हूं, ये क्या है, दुख किसको होता है, दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है। संसारी भोगी जो है अपनी स्मृति में भोग को भरता है, त्यागी अपनी चित्त की वृत्ति में त्याग को भरता है, और महाराज भक्त अपनी स्मृति में भगवान को भरता है। भक्त की वृत्ति में स्मृति का प्राधान्य है, भोगी की वृत्ति में भोग का प्राधान्य है, त्यागी की वृत्ति में त्याग का प्राधान्य है, और योगी वृत्ति का पेट खाली कर देता है, और ज्ञानी वृत्ति को बाधित करके और अपने आप में चलाता है, सदा सदा के लिए मोक्ष का अनुभव कर लेता है, जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लेता है। तो अभ्यास, अगर अंदर आप भगवान की शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अंदर खुशी चाहते हैं, और बाहर की नश्वर चीजें चाहते तो आप जब अंदर ध्यान करेंगे ना तो बाहर की चीजें याद आएगी। इसलिए आत्मज्ञान का विचार करें कि बाहर को भी सत्ता देने वाला वो अंदर वाला है परमात्मा। हरिओम तत्सत, बीजू बदो दिखा वो गप सत। हरिओम तत्सत, आपको अहमदाबाद का नहीं, पूरे गुजरात का नहीं, पूरे राज्य भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का आपको राजा बना दिया जाए और आपको ये कंट्रोल कर दिया जाए आपके ऊपर कि आप नींद नहीं कर सकते। नींद छोड़ो और पूरे विश्व का सम्राट बना दे तो निद्रा त्याग करना आपके बस की बात नहीं, आप पसंद नहीं करेंगे। निद्रा में आपके शरीर को आराम मिलता है और प्राणायाम करके जब समाधि में जाते तो आपको स्वयं को आराम मिलता है। आराम ही राम के वास्तविक तत्व में आप पहुंच जाते हैं तो फिर विकारों का वहां प्रभाव नहीं जमता। तो प्राणायाम तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत योग्यता बढ़ाता है। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए, शुद्ध हवा में करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। और प्राणायाम दो प्रकार का होता है, एक सगर्भा और एक अगर्भा। प्राणायाम करते समय भगवान का नाम लें उसे सद्धर्मा प्राणायाम कहते हैं, और ऐसे श्वास लें और छोड़ें उसको ऐसे प्राणायाम। और उस प्राणायाम के पेटा भेद कई हैं। वस्त्रिका प्राणायाम है, 142 की पद्धति का प्राणायाम है। ये प्राणायाम के अलग अलग ढंगों से बहुत किस्म उसमें हो सकते पेटा भेद, लेकिन धीरे धीरे आप श्वास को जितना अंदर और बाहर रोकने में सफल होते जाएंगे उतना आपका मन आपका तन तंदुरुस्त रहेगा। जैसे आपने श्वास लिया और घड़ी सामने रख दी, 15 सेकंड तक आपने श्वास को रोका, 4 दिन 6 दिन ये अभ्यास किया और 15 सेकंड श्वास रोक के फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा 10 बार किया, महाराज 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट दो से आपने 5 मिनट में ये 10 प्राणायाम कर लिए। 1 महीना के बाद आपने 8 मिनट में 10 प्राणायाम किए, 3 महीने में आपने 10 मिनट में 10 प्राणायाम किए, 4 महीने में आपने 15 मिनट में 10 प्राणायाम किए और 5 महीने के अभ्यास में आपने महाराज 20 मिनट में 10 प्राणायाम किए, 1.5 मिनट रोक लिया, 1.5-2 मिनट रोक लिया, आपको जादू जैसा फायदा होने लगा। लेकिन एक बात इसमें और सावधानी से देखनी है कि प्राणायाम लेते समय तो जल्दी ले ले, कोई हरकत नहीं, लेकिन छोड़ते समय फोर्स से नहीं छोड़े। फोर्स से छोड़ेंगे तो नाड़ियों की शक्ति क्षीण होती है। जो बच्चे कमजोर होते हैं ना उनको आप रीडिंग करेंगे तो सोते समय उनके श्वास फुटकार से निकलेंगे तो वो कमजोर होंगे, और सोते समय उनके श्वास कम स्पीड से निकलते हैं तो बलवान होंगे। मैंने नारायण को कई बार नींद में चेक किया तो उसके श्वास फुर्ती से छोड़ता है। अब उसको श्वास चेंज कराऊंगा तो फिर तगड़ा हो जाएगा। ओम ओम ओम। तो आज का श्लोक हमें सिखा रहा है प्राण के स्पंदन का निरोध। इति उपाय चित्त सो जाए है। ये जो उपाय है चित्त पर विजय करने के, मन के हारे हार और मन के जीते जीते। कभी कीर्तन करते करते भी चुप बैठ जाए, भगवान का स्मरण करते करते फिर शांत बैठ जाएं, कभी विचारों को देखें, कभी आप कोर्ट कचेरी से डंडे नौकरी से उसे 1-2 मिनट गैप लगाकर लेकर शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वास चल रहा है उसको देखें, विचार से चले उसको देखें। ऐसा करते करते आपके चित्त की योग्यता बढ़ेगी। ओ संसार के सब कार्य करते समय, संसार की सब सुविधाएं भोगने पर भी जो लाभ नहीं हुआ है वह लाभ प्राणायाम की सिद्धि से उससे अनंत गुना लाभ हो सकता है। आपका श्वास चल रहा है उसको गिनते जाएं, या तो श्वासोश्वास को देखते जाएं, अथवा श्वासोश्वास में अपने इष्ट का स्मरण करते जाएं, लेकिन प्राण के स्पंदन की गति को निहारते निहारते गिनते गिनते कम होने दीजिए। बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा। मरने के बाद संसार की चीजें तो नहीं चलेगी, लेकिन यह अभ्यास तुम्हारा मरने के बाद भी तुम्हारी सेवा करेगा। इस लोक के बाद भी यह अभ्यास तुम्हारी रक्षा करेगा, सेवा करेगा। आप पूरे प्रेम से पूरे चाह से प्राणों का अभ्यास कीजिए। बुद्ध ने अनासक्ति योग के द्वारा साधकों को अभ्यास करवाया था। प्राण को निहारने की कई तरकीबें होती हैं, प्राण व्यय करने के कई तरीके होते हैं। खुद गहरी गहरी शांति में डूबते जाएं, मेरा तो गिरधर गोपाल और न कोई, मेरा तो प्रभु है सच्चा मित्र। हमारा चित्त परमात्मा की शांति से शांत होता जाए। स्तोत्र पाठ मानसिक करने से उसका पुण्य नहीं होता और मंत्र जोर जोर से करने से उसका पुण्य नहीं होता, लेकिन प्रभु का कीर्तन तो हर घड़ी किया जा सकता है, हर अवस्था में किया जा सकता है, प्राणों को भी हर अवस्था में निहारा जा सकता है। परमात्मा ने शांति मंदिर हजारों साधक हो आता, हजारों साधक होते हुए भी अभी हजारों नहीं है, अभी सब उस एक परमात्मा की याद में है, सब उस एक में मिले हुए हैं, सब उस एक के रास्ते पर गहरी यात्रा की जा रहे हैं। सब उस एक विश्रांति स्थान में सत्या मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। इस प्रकार साधक लोग अनुभव करते हैं। हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं, हम उसी के ध्यान में मग्न होते हैं जो काही मात्र का परम ज्योति है, जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, महावीर और बुद्ध, मूसा और ईसा, जिसमें विश्रांति पाकर महान बनते हैं, उसी प्रभु में हम भी विश्रांति पाते जाएं। तो मेरे चंचल चित्त तो बाहर क्या देखेगा, क्या सोचेगा, जिससे देखा जाता है उस प्रभु में डूबता जा, वही आत्मा परमात्मा का अभ्यास करता जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उसी प्रभु को प्यार करते जा, उसी के अभ्यास में घर अपनी पवित्र करता जा। गहरी गहरी शांति हमारे रोम रोम को परमात्मा के प्रसाद से भरती जाए। एक एक से कल हमारा अष्टमेघ यज्ञ में सफल हो रहा है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, भगवान शंकर कहते हैं ध्यान करता हुआ आदमी तो परमात्मा में स्नान करता है, तीर्थ वाला तो जलाशय में स्नान करता है। इस क्षण इस घड़िया आप परमात्मा में डुबकी मार रहे हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, अभ्यास करते जाइए आपके लिए सरल हो जाएगा। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ करते हैं स्वाहा करते हैं, लेकिन उसमें पंच अरुचि आहुति दी जाती है, लेकिन यहाँ तो पांच विकार ही परमात्मा में विश्रांति पा लेते हैं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करने वाले को तो भविष्य में स्वर्ग का सुख मिलता है, देवताओं का अमृत मिलता है, लेकिन ध्यान करने वाले को तो परमात्मा का अमृत मिलता है और अभी मिलता है। ध्यान के समय ही उसे विश्रांति मिलती है। हो गई रहमत तेरी, प्रभु जी रहमत आ गई, देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। वाग गदगदा द्रवति व्यस्त चित्तम रुदति भीक्षणम हसति प्रचित। भागवत में लिखा है वाणी गदगद होने लगती है, कभी भीक्षण रुदन करता है तो कभी साधक हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है तो कभी आंसू बहाता है, लेकिन उसका आंसू बहाना भी प्यारे के लिए प्यार हो जाता है, उसका हंसना भी प्यारे की प्रसादी हो जाती है और उसका रोना भी प्यारे की बंदगी हो जाती है। वो अनम पुनाती ही, ऐसा जो भक्त जहाँ बंदगी करता है, जहाँ ध्यान करता है, वो जगह तो पवित्र होती है, लेकिन उसको छूकर जो हवाएं जाती है वो भी लोगों को पवित्रता का प्रसाद चखा देती है। वो अनम पुनाती ही, भुवनों को पुनित करता हुआ मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। मेरा भाई प्रेम दीवानी, हम हरि के प्रसाद में, आत्म प्रसाद में, उस प्यारे के प्रेम में, उस दुल्हारे के दुल्हार में, उस हरि के हर्ष में अपने चित्त को और पवित्र किए जा रहे हैं। जय हो प्रभु तेरी जय हो। हमें शांत सत्संग दिया है, परमहंस जैसा सत्संग सुनकर विश्रांति पाते हैं, ऐसा ही हमें परमहंसों की गति में तूने भेजा है। हे प्रभु तेरा जय हो, तेरा जय हो मेरे नाथ। सत्रह पलकारे आंख के सत्रह सत्रह पलकारे गिरे, उतनी देर जो आत्म ध्यान में डूबता है उससे राजसु यज्ञ करने का फल होता है। सत्रह पल जो परमात्मा के ध्यान में डूबता है उसे बाद के यज्ञ करने का फल होता है। आधा घंटा जो परमात्मा के उस अंतर्यामी प्रभु के ध्यान में डूब जाता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। जिन संतों का दर्शन करके, जिन सत्पुरुषों का दर्शन करके, जिन साधु पुरुषों का दीदार करके संसारी लोग पवित्र होते हैं, वे साधु पुरुष भी इसी परमात्मा के ध्यान से तो पवित्र होते हैं। कोई सर्फ या साबुन से थोड़े पवित्र होते हैं महापुरुष। महापुरुष भी इसी परमात्मा के ध्यान से पवित्र होते हैं। इसी ध्यान में तुम डूबते जाओ। वाह वाह, विद्या से विनय आता है उसी पवित्र विद्या का हम आदर करते हैं। जिस बेवकूफी से अहंकार आता है उस बेवकूफी को मिटाने के लिए हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। जिस अविद्या से जन्म मृत्यु होता है उस अविद्या को हम ब्रह्म विद्या से निवृत्त करेंगे। जिस अभ्यास से साधक सिद्ध बन जाता है, जीवन मुक्त होकर अपना कल्याण करता है और उनका भी कल्याण करने का जिसमें सामर्थ्य स्वाभाविक आ जाता है, ऐसे हम आत्मज्ञानी पुरुषों के वचनों को, ऋषियों के संकेतों को, भगवान के भक्तों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। भगवान की कथा सत्संग सुनने का फल, भगवान की कथा का फल भगवान ही होता है। शाश्वत की वार्ता का फल शाश्वत होता है।
नश्वर की वार्ता का फल नश्वर होता है। हम उसी शाश्वत परमात्मा की वार्ता में अपनी घड़ियां सार्थक कर रहे हैं। हम उस शाश्वत के प्रसाद में अपने चित्त को पवित्र कर रहे हैं। हम उस परमात्मा के प्यार में, परमात्मा की बंदगी में अपने चित्त वृत्ति को सार्थक कर रहे हैं। हे प्रभु, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, हमारे प्यार का यही अंतिम मुकाम हो कि दुनिया का अगर स्मरण हो जाए, दुनिया की याद आ जाए, होठों पर किसी का नाम आए तो उसमें तेरी याद आ जाए। हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तभी भजन करो दिन रात। काम क्रोध लोभ मोह चिंता अभिमान मद मत्सर ये सब छोड़कर मैं जो कुछ करूं तेरी पूजा हो जाए, मैं जो कुछ करूं तेरी बंदगी हो जाए, मैं जो कुछ करूं वो तेरा प्रसाद हो जाए, मैं जो कुछ करूं वो तेरे प्यारे संतों के दिल को पसंद हो जाए। मेरे प्रभु, हे दया निधे, हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे योगियों की आत्मा, हे भक्तों के भगवान, हे बुद्ध का बुद्धत्व, हे महावीर की वीरता, हे जीसस का पिता, हे ज्ञानेश्वर का परब्रह्म, हे एकनाथ जी के अलख, हे सब तेरे अनेक नाम अनेक रूप हैं। हमारा चंचल चित्त तेरे प्रसाद का अनुभव नहीं करने देता है। अब हम तेरे प्रसाद के करीब आ रहे हैं, हमारी सौभाग्य की घड़ियां बढ़ रही है, हमारी पुण्य की घड़ियां बढ़ रही है। हरि चर्चा का फल हरि होता है, प्रभु चर्चा का फल प्रभु होता है। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे संतों की प्यालियां पिला दे कोई, मुझे फकीरों की प्यालियां पिला दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेंक चलो वहाँ, अब जीवन की किश्ती को उस हरि के सागर, हरि सागर के राम रस के सागर के किनारे, अब जीवन की वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को ले जाओ, जहाँ से वृत्तियाँ उठती है। हम हमारे चित्त को परमात्मा के प्रसाद से भरते जाएंगे, हम हमारे चित्त को शांति से भरते जाएंगे, हम हमारे चित्त को भक्ति से भरते जाएंगे, हम हमारे घड़ियों को सेवा से सार्थक करते जाएंगे। चित्त को एकाग्र करने के निष्काम कर्म योगियों के उपाय हैं कि सामर्थ्य के अनुसार अपने पास जो है वो दूसरे की सेवा में लगा दो, और शक्ति के अनुसार परिश्रम करो, और बदला भगवान के चरणों में निछावर कर दो। चित्त तुम्हारा जल्दी जल्दी शांत हो जाएगा, चित्त तुम्हारा परमात्मा प्रसाद से भरने लगेगा। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरात निरचाक्रिया। जो क्रिया को छोड़ देता है, अग्नि को छूना बंद कर देता है और आलस्य से काषाय वस्त्र पहन लेता है उसे संन्यासी नहीं कहा जाता है। लेकिन आसक्ति को छोड़कर जो निष्काम भाव से परोपकार के काम करता है उसका हृदय पवित्र होने लगता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन निर्मल होता है सत्संग से उसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। दुनिया का धन वैभव जहाँ काम नहीं देता, वहाँ आत्म वैभव आत्म प्रसाद परलोक में भी जीव की रक्षा करता है। इसलिए आज का श्लोक हमें सीख दे रहा है, सत्संगो वासना त्याग, कर्म तो करे लेकिन कर्म का बदला तुच्छ वासना तृप्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे कर्मों का फल परमात्मा की प्रसन्नता, और जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए उसे किस बात का घाटा है, उसे किस बात की चिंता है। हम साहब को प्रसन्न करने की चिंता करते हैं, मिसेस को प्रसन्न करने की चिंता करते हैं, और महाराज कितने कितने को प्रसन्न करने की चिंता करते हैं, फिर भी संसार अप्रसन्न रह जाता है। लेकिन जो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए निष्काम भाव से सेवा करता है, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाता है, संसार भी उसके लिए प्रसन्न हो जाता है। ओम विश्व विख्यात सनातन धर्म के स्तंभ भगवान वेद व्यास मणिकर्णिका घाट पर गए। थोड़ा अभ्यास किया। भगवान व्यासेश्वर की स्थापना की, उनके मन में इच्छा हुई कि और लोग भी सत्संग का लाभ लें और उनका जीवन भी धन्य धन्य हो। वो कोई महान ग्रंथ लिखने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन सारे ग्रंथ जहाँ से पैदा होते हैं, सारे शास्त्र जहाँ से छलकते हैं, उस परमात्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए वे चिंतित से बैठे थे। एक बुजुर्ग आए बुढ़े, उन्होंने कहा, व्यास चिंता क्यों करते हो, तुम ध्यानस्थ हो जाओ, थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा दो, भगवान मध्येश्वर की स्थापना करो, फिर तुम जो लिखोगे वो शास्त्र बन जाएगा। और कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास ने मणिकर्णिका घाट पर मध्येश्वर भगवान की स्थापना की। मध्येश्वर भगवान की स्थापना कैसे की जाती है वो भी जरा समझ लें। एक वृत्ति उठी और दूसरी उठने को है, उसके मध्य की जो अवस्था है वो मध्येश्वर है। उस मध्येश्वर में जो अटक गया उसने जो कह दिया वो शास्त्र हो जाता है। इतना खजाना सबके पास है, लेकिन मूढ़ आदमी उस मध्येश्वर की शक्ति को दूसरों के सताने में लगाते हैं, और सज्जन आदमी उस मध्येश्वर की शक्ति को दूसरों की सेवा में लगाते हैं, और ऋषि उस मध्येश्वर शक्ति को दूसरों को मध्येश्वर में पहुंचाने के लिए लगाते हैं। समय तो सबका है, सबके पास है, लेकिन जो जिसके लिए लगाता है उसको वही चीज प्राप्त होती है। दो असुर थे, इलवल्ला और वातापी। उन्होंने मध्येश्वर की शक्ति तो ली, तपस्या किया। तपस्या करके उन असुरों ने, इलवल्ला ने और वातापी ने, बहुत सामर्थ्य प्राप्त किया। फिर साधु संत ऋषि मुनियों के मध्य एक बड़े घराने के धर्मात्मा बनकर रहने लगे, और साधु संत ब्राह्मण आते थे, उनको अपने घर भोजन करने के लिए ले जाते थे। भोजन में जो रसना के गुलाम होते थे, जिनको पवित्रता का अभ्यास नहीं होता था, उनको वो बकरा काट के भोजन करा देते थे। एक भाई बकरा बन जाता था अपनी विद्या के बल से, भोजन करा देते थे। एक भाई को काट के दूसरा भाई भोजन करा देता था। भोजन करके वो ब्राह्मण उठे, रसना के गुलाम जब उठे तो बुलाता था, रे वातापी भैया कहाँ है, जल्दी आ जा। वो तो पेट में पहुंच जाता, बोले यहाँ हूँ, और खुद का मार के पेट फाड़ के ब्राह्मणों का बाहर आ जाता। ऐसे कई ब्राह्मणों का उन्होंने घात किया, कई साधुओं का। अगस्त मुनि के पास से पहुंच गए और अगस्त ऋषि को आमंत्रण दिया है कि महाराज हमारे पास गिनने को आना। वैश्य तो बाहर से सुहावना सुंदर बड़ घराने का, लेकिन अंदर में बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दखी जैसे। अगस्त ऋषि समझ गए, अगस्त ऋषि को भी भोजन करा दिया। अगस्त ऋषि का अभ्यास तप ज्यादा था, समझ गए। भोजन करने के बाद अगस्त ऋषि ने पेट पर हाथ घुमा के खाना हजम कर लिया। उसने बोला, अरे वातापी। अगस्त हंसे के बेवकूफ किसको बुलाता है, तो हजम हो गया, ऐसे किसको बुलाता। तो इलवल जो था वो कुपित हो गया और तेज अग्नि का रूप धारण किया, लेकिन अगस्त ऋषि ने अपनी ब्रह्म अग्नि की एक चिंगारी निकालकर उसको भस्म कर दिया। तो जीवन में जिसका अभ्यास बलवान होता है, जिस चीज का अभ्यास बलवान होता है, वो आदमी उस विषय में पारंगत हो जाता है। तो खंड खंड विषय तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका अभ्यास रोटी रोजी तक होता है। लेकिन उसके साथ अगर अखंड का अभ्यास मिला दिया जाए तो खंड खंड विषयों का उपयोग हो जाए और अखंड का साक्षात्कार हो जाए। आज के श्लोक का यही अर्थ लग जाए तो स्वाभाविक होगा। ओम ओम। तो आप जो भी व्यवहार करें, शत्रु दिखे, मित्र दिखे, अपना दिखे, पुराया दिखे, व्यवहार तो अलग अलग होगा, लेकिन व्यवहार के बाद समझना कि सबको सत्ता देने वाला तो वही मेरा परमात्मा है, सब में वो एक है। तो राग और द्वेष के व्यवहार में, राग और द्वेष के प्रसंग